वैदेही ने देव से यशवर्धन से मिलने की हाँ कह दी थी। देव भी अपना सारा काम निपटाकर अपने घर जा चुका था। उसके जाने के बाद वैदेही ने नरगिस के साथ डिनर किया और रात को सोने के लिए अपने कमरे में आ गई। वो अपने कमरे में चहलकदमी करते हुए खुद से बातें कर रही थी। क्या इस तरह उससे मिलना सही रहेगा? पिछली बार हमारी मुलाकात अच्छी नहीं रही और मैंने उससे ये तक कह दिया था कि मैं उससे अब कभी नहीं मिलना चाहूंगी। कॉल करके अपॉइंटमेंट ले लेती हूँ, लेकिन अब तक काफ़ी देर हो गई है। वैदेही ने घड़ी की तरफ देखा तो रात के 12 बज रहे थे। उसने उस वक्त कॉल करना सही नहीं समझा और सोने चली गई। दूसरी तरफ यशवर्धन सिंह अपने कमरे की खिड़की से आसमान में तारों को देख रहा था। कल रात हुई घटना की वजह से वो पूरे दिन घर पर ही था। जब भी आप सच्चाई के लिए अपनी आवाज़ उठाते हैं तो आपको इन सब चीज़ों के लिए तैयार रहना चाहिए। बात पहले भी कई बार जान पर आई है, लेकिन इतना दर्द कभी नहीं हुआ जितना आपके गलत समझने पर हुआ। वैदेही, काश आप आज हमारे साथ होते बाबा, यशवर्धन ने आसमान की तरफ देखकर कहा। जब भी उसे अपने पिता हर्षवर्धन की याद आती थी तब वो बालकनी में खड़े होकर तारों को देखा करता था। आज भी वो उन्हें याद करते हुए वही कर रहा था। कुछ देर वैसे ही आसमान को देखने के बाद यशवर्धन ने टाइम देखने के लिए अपना मोबाइल निकाला। रात के 1 बज रहे हैं और आज फिर नींद नहीं आ रही, अकेला रहना बहुत मुश्किल होता है, बोलते हुए यशवर्धन ने गहरी सांस लेकर छोड़ी। उसके बाद उसने बालकनी का पर्दा गिराया और अपने कमरे में आ गया। काफ़ी देर कोशिश करने के बाद भी उसे नींद नहीं आ रही थी। उसने अपना लैपटॉप निकाला और सोशल मीडिया पर वैदेही का अकाउंट निकालकर उसे देखने लगा। तुम्हारी जगह कोई और लड़की होती तो इतनी खूबसूरत होने के बाद मॉडल या एक्ट्रेस बनना पसंद करती, बट तुम्हारी तो बात ही अलग है, बोलते हुए यश वैदेही की पिक्चर्स ट्रोल करने लगा। कौन कह सकता है कि ये मासूम और नाजुक सी दिखने वाली लड़की इतनी हिम्मत वाली है कि जंगल के बीच में 5 गुंडों से लड़ने से भी नहीं हिचकिचाई? तुम स्पेशल हो वैदेही, बहुत स्पेशल, तभी मैंने तुम्हें चुना। यशवर्धन ने लैपटॉप को साइड में रखा और लाइट बंद करके सोने की कोशिश करने लगा। उसकी आंखों के सामने बार बार वैदेही का चेहरा घूम रहा था। अगली सुबह वैदेही उठी और घर पर काम करने के बजाय ऑफिस जाने का सोचा। अभी भी वो यशवर्धन को मैसेज करने में हिचकिचा रही थी। भले ही मुझे उससे काम है, लेकिन मैंने खुद से मैसेज किया तो उसे ये ना लगे कि मैं उसकी जासूसी कर रही हूँ। शायद प्रतीक सर इन सब में मेरी हेल्प कर पाएं, वैदेही ने खुद से कहा। वो ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रही थी। हमेशा के लिए उसने अपने बालों को टाइट पोनीटेल में बांधा। तभी नरगिस नाश्ता लेकर अंदर आई और उसने वैदेही को तैयार होते देखा तो हैरानी से पूछा, तुम ऑफिस जा रही हो? हाँ, ऐसे तैयार होकर मैं किसी पार्टी में तो नहीं जा सकती ना। मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि तुम और देव कल साथ काम कर रहे थे, मुझे लगा कि आज भी साथ काम करोगे। इन सबको छोड़ो और ये बताओ कि हम यश जी से मिलने के लिए कब जा रहे हैं? नरगिस के मुँह से यश जी सुनकर वैदेही जोर जोर से हंसने लगी। क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो? नरगिस ने उसे घूर कर देखा और कहा। बिल्कुल नहीं, वैदेही ने खुद को सामान्य करके बोला। वैसे तुम्हें बता दूं कि तुम्हारे यश जी से मिलने का मेरा अभी कोई इरादा नहीं है, वैदेही ने यश जी शब्द को कुछ ज्यादा ही खींचकर बोला ताकि उसे हाईलाइट कर सके। अभी नहीं तो कभी तो होगा ही, बस उस कभी वाले टाइम मुझे मत भूलना, नरगिस ने क्यूट सी स्माइल देकर बोला। वैदेही ने उसकी बात पर हामी भरी। दोनों ने नाश्ता किया और वहां से ऑफिस चली गई। वैदेही ने देव को भी ऑफिस आने का बोल दिया था। उसके आते ही दोनों प्रतीक के ऑफिस में थे। उन दोनों को एक साथ देखकर प्रतीक ने अपने दिल पर हाथ रखा और पास पड़ा पानी का ग्लास एक बार में खाली कर दिया। उसके बाद उसने कहा, मैं जब भी तुम दोनों को साथ देखता हूँ मेरे दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। अब कौन सा नया रायता फैलाया तुम दोनों ने? वैदेही और देव दोनों आकर प्रतीक के सामने की टेबल पर बैठ गए। सर, रायता फैलाने की नहीं, खाने की चीज़ है और खाने की चीज़ को फैलाया नहीं जाता, देव ने मजाकिया तरीके से जवाब दिया। वैदेही, तुम भी हो लेकिन साथ ही मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। जब मैंने कहा है कि तुम लोग टाइम से ऑफिस से चले जाया करो, उसके बाद लेट नाइट तक काम करने की क्या जरूरत थी? जानते हो ना कि जंगल का रास्ता सेफ नहीं है, फिर उस रास्ते से गए ही क्यों तुम दोनों? प्रतीक उन दोनों को डांटने लगा। वैदेही और देव कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोलते उससे पहले प्रतीक उन्हें चुप करवा देता। चुप रहो तुम दोनों, मैं तुम दोनों की एक नहीं सुनने वाला। उस रास्ते से गए सो गए, क्या जरूरत थी हीरो बनकर उस यशवर्धन की जान बचाने की? अरे, उसने एक थैंक यू का बुके तक नहीं भेजा, प्रतीक ने गुस्से में कहा। आपको बुके चाहिए तो मैं ऑर्डर कर देता हूँ सर, देव ने कहा। बात एक बुके की नहीं होती है देव, पिछली बार उससे मिला था तो लगा था कि वो एक अच्छा इंसान है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो इतना थैंकलेस होगा। मुझे भी इसकी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। वैदेही मैम, क्या आपके घर पर कोई बुके आया? मुझे तो कुछ नहीं मिला। देव और प्रतीक आपस में ही बात करे जा रहे थे। वैदेही ने अपना सिर पकड़ा और धीरे से बड़बड़ाते हुए कहा, कौन कहता है कि जब दो लड़कियां मिल जाएं तो ज्यादा बातें करती है? तुम बताओ वैदेही, प्रतीक ने वैदेही से पूछने के लिए उसकी तरफ देखा तो वैदेही ने उसकी बात को काटकर उसे घूरते हुए देखा और बीच में बोला, मुझे कुछ नहीं बताना। देव, तुम भूल रहे हो कि हम यहाँ किस काम के लिए आए थे। जब से आई हूँ तब से आप दोनों की खिटर पिटर सुन रही हूँ, वैदेही ने थोड़ा जोर से कहा। उसकी बात सुनकर देव और प्रतीक दोनों ने अपने मुंह पर अंगुली लगा ली। अच्छा बताओ, प्रतीक ने अपने मुंह पर अंगुली लगाए हुए ही बोला,
हाँ, तो ध्यान से सुनिए, आप यशवर्धन से जिस बुके की उम्मीद कर रहे हैं वो तो कभी नहीं आने वाला। दूसरी बात ये कि वो कोई अच्छा इंसान नहीं है। जितना सीधा और अच्छा वो लोगों के लिए बन रहा है, सच्चाई इससे उलट है। और वो क्या? प्रतीक ने हैरानी से पूछा। उस रात चार गुंडे मौजूद थे, जिनमें से दो की मौका ही वारदात पर मौत हो चुकी थी। एक हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है तो दूसरा हॉस्पिटल ले जाते वक्त रास्ते में मर गया था। तुम जानते हो, मैंने सिर्फ दो गोलियां चलाई थी, वो भी डिफेंस करने के हिसाब से। अब आपको ये बताने की जरूरत तो नहीं होगी कि उन लोगों की ये हालत किसने की होगी। वैदेही ने एक सांस में उसे सारी बातें बता दी। ऊपर से उनका ये कहना है कि जिसने भी उन पर हमला करवाया था वो उसे अच्छे से जानते हैं। वैदेही मैम ने जब उसके बारे में पूछा तो बस नेताओं की तरह रटा रटाया भाषण दे दिया कि मैंने ये आप लोगों की भलाई के लिए किया है। बची हुई बात देव ने प्रतीक के सामने रखी। अब तुम दोनों क्या चाहते हो? प्रतीक ने सीधे सीधे पूछा। यशवर्धन से मिलना, वैदेही और देव ने एक साथ जवाब दिया। उससे क्या होगा? वैदेही ने प्रतीक की बात का जवाब देते हुए कहा। उस पर हमला करवाने वाले का नाम तो उसने बताया नहीं, बस अब यही उम्मीद है कि वो ये बता दे कि उसने जो किया उसमें मेरी क्या भलाई छुकी थी। प्रतीक को समझते देर नहीं लगी वैदेही और देव उससे क्या चाहते हैं। उसने बात को बिना ज्यादा घुमाए फिराए कहा, मैं उसके इंटरव्यू के लिए अपॉइंटमेंट फिक्स करवाता हूँ। वैदेही और देव ने एक दूसरे की तरफ मुस्कुरा कर देखा। भले ही प्रतीक उनका बॉस था, लेकिन वो सारे एम्प्लॉयज के साथ काफी फ्रेंडली था। यही वजह थी कि वो सभी बिना डरे अपनी बात उसके सामने रख देते थे। प्रतीक ने बिना देरी किए यशवर्धन के असिस्टेंट अनंत देसाई को कॉल किया। प्रणाम देसाई जी, सुना है आजकल यशवर्धन जी कुछ ज्यादा ही विकास कार्यों में ध्यान दे रहे हैं।
विकास नहीं होगा तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे? सामने से अनंत देसाई की आवाज आई। जी जी, आप भी सच कह रहे हैं, प्रतीक ने नकली हंसी हंसते हुए कहा। माना की कहावत है, नेकी कर दरिया में डाल, लेकिन जानते हैं ना, आजकल के ज़माने में सब कुछ उल्टा ही चल रहा है। आजकल तो नेकी कर और सोशल मीडिया पर डाल का ज़माना चल रहा है। अब दूसरों को पता नहीं चलेगा तो लोग तो यही समझेंगे ना किसी और का काम है। आप जानते हैं ना कि यशवर्धन सिंह जी को दिखावा पसंद नहीं है, वो अपने पापा के उसूलों पर चलते हैं। उनके हिसाब से दाएं हाथ से दान दो तो बाएं हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए। हम कहाँ कह रहे हैं कि आप बाएं हाथ को बताइए, हम तो बस ये कह रहे हैं कि दाएं हाथ में जिन जिन लोगों के हाथ में मोबाइल्स और टीवी का रिमोट होता है बस उन्हें ही पता चलेगा। कुछ जुगाड़ कीजिए ना इंटरव्यू का, प्रतीक उन्हें मनाने की पूरी कोशिश कर रहा था। अनंत देसाई ने थोड़ी देर तक सोचा और फिर जवाब देते हुए कहा, ठीक है मैं कुछ करता हूँ, लेकिन हमारी भी एक शर्त है। जी सर, आप हुक्म तो कीजिए, आपका हुक्म सर आँखों पर, प्रतीक ने जवाब दिया। हम चाहते हैं यशवर्धन बाबू का इंटरव्यू आज शाम को उन्हीं के निवास पर लिया जाए। कल उनके साथ जो हादसा हुआ उसकी वजह से वैसे भी वो चर्चा में बने हुए हैं, ऐसे में उनका इंटरव्यू आएगा तो सब तरफ उन्हीं की हवा होगी। और हाँ, इंटरव्यू लेने के लिए उसी रिपोर्टर को भेजिएगा जो उस वक्त उसके साथ थी। जी जरूर, शाम को वही रिपोर्टर यशवर्धन जी के घर पर होगी। प्रणाम देसाई जी, प्रतीक ने कहा और फ़ोन कट कर दिया। जैसे ही उसने कॉल कट करके वैदेही की तरफ देखा तो वो उसकी तरफ घूर कर देख रही थी। क्या तुम तो अच्छे से जानती हो ना कि ऐसे लोगों से काम निकलवाने के लिए उनकी जी हुजूरी करनी पड़ती है। अब मैं उससे एटीट्यूड से बात करता तो वो कभी हाँ नहीं कहता, प्रतीक ने सफाई दी। चलिए मान लेते हैं, कहकर वैदेही कुर्सी से खड़ी हुई और वहां से जाने लगी। अचानक उसे नरगिस का ख्याल आया तो वो वहीं पर रुक गई और प्रतीक से बोली, टीम में नरगिस का भी नाम होना चाहिए, वो यशवर्धन सिंह से मिलना चाहती हैं। उसकी बात सुनकर प्रतीक हल्का सा हंसा और जवाब में कहा, अच्छा मुझे तुम उस एक फेमस पब्लिक फिगर का नाम बता दो जिससे वो नहीं मिलना चाहती हो। जवाब में वैदेही ने कंधे उचका दिए। मुझे नहीं पता, आप देख लीजिएगा, कहकर वैदेही अपनी ऑफिस की तरफ बढ़ने लगी। उसके मन में यशवर्धन के ही ख्याल चल रहे थे। अब दचकर कहाँ जाओगे तुम यशवर्धन सिंह, तुम्हें मेरे सवालों के जवाब देने ही होंगे। तुम्हें बताना होगा कि तुमने उन चार गुंडों को क्यों मारा, ऐसा क्या है जो तुम सबसे छुपा रहे हो, उसने सोचा। अपनी केबिन में आने के बाद वैदेही देव के साथ मिलकर शाम को होने वाले इंटरव्यू की तैयारी करने लगी। वहीं दूसरी तरफ अनंत देसाई के द्वारा शाम को होने वाले इंटरव्यू की खबर यशवर्धन सिंह तक भी पहुंच चुकी थी। आपका बेसब्री से इंतजार रहेगा वैदेही जी, मैंने कहा था ना कि आप खुद मेरे तक चलकर आएंगे, बहाना चाहे जो भी हो, लेकिन एक दिन की भी दूरी आपसे बर्दाश्त नहीं हुई। खुद की कहने की हिम्मत नहीं हुई तो इंटरव्यू लेने के बहाने अपने बॉस से बात करवा दी। हमें आपकी ये अदा भी पसंद आई, पता नहीं वो शाम कब आएगी जब आप हमारे साथ होंगी, यशवर्धन सिंह ने सोचा और शाम को होने वाले इंटरव्यू की तैयारी करवाने लगा। हेलो रीडर्स,